This is an ABP Life podcast.
दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग जहां हादसा हुआ 27 जुलाई की रात को, 27 जुलाई की रात को एग्जैक्टली हुआ क्या एक बार ये बता देते हैं कि बिल्डिंग में पावर कट की वजह से बेसमेंट में बनी जो लाइब्रेरी है उसका बायोमेट्रिक गेट जैम हो गया, स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए, गेट बंद होने की वजह से पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा लेकिन कुछ मिनट बाद पानी जो है वो बहुत तेज प्रेशर के साथ अंदर आने लगा क्योंकि गेट टूट गया। पता लगा कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भर रहा है, बहाव इतना तेज कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स का, कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हुए और महज 2-3 मिनट में पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट तक पानी भर गया। बचाने के लिए स्टूडेंट्स को जब रस्सियां फेंकी गई, पानी गंदा था इसलिए रस्सियां नहीं दिखाई दी, पानी में बेंच भी तैर रही थी और इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कतें हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई इस हादसे में, लेकिन जिम्मेदार आखिर कौन है इस हादसे का? आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करते वक्त पढ़ाई, अच्छे टीचर्स, इनके अलावा किन बातों का ख्याल रखना है? आइए जाने ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज के FII में। ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट में मानसी हूँ आपके साथ और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रिटायर्ड DCP दिल्ली LN राव। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो यही कि जो बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है वो LG के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि LG जो है वो जिम्मेदार है इस हादसे के, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, बवाल भी काफी मच रहा है, आपके हिसाब से इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है?
देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना या कहिए हक जता रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रही हैं, एक इसको फुटबॉल की तरह लेके गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंक रही हैं। और आम आदमी पार्टी जहां तक बात है वो तो हमेशा यही एलिगेशन करते हैं, कोई भी बात हो तो वो यही बताते हैं कि हमारा काम नहीं है, वो उन्होंने खराब कर दिया, ये नहीं करते, LG साहब नहीं करने देते हमको, ये BJP नहीं करते। वो अलग बात है उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, वो इसको मैं समझता हूँ इस केस में उस पॉलिटिकल एजेंडे को नहीं टूल देना चाहिए क्योंकि यह बड़ा सीरियस मामला है। 3 जो प्रभावशाली जो जिसको प्रतिभाशाली जो बच्चे थे उनकी जान चली गई है, जो कि IAS सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट थे, वो अपने घर बार छोड़कर कहां से, एक तो साउथ इंडिया से आए थे, एक यूपी के हैं, तेलंगाना से हैं, तो ये देखिए ये अपने घर बार छोड़कर जो और कितना मोटी फीस देकर ये पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई इन सेंस कोचिंग कर रहे थे, तो इन चीजों को देखते हुए, और ये तो शुक्र है 3 ही बेचारे ये दुर्भाग्यपूर्ण इनको उनकी मौत हो गई, इससे और भी बहुत से ज्यादा बच्चे थे जो शायद ये तैरना नहीं जानते थे, बाकी बाहर निकल आए, और तो ये सारी चीजें देखकर ये यहाँ पर क्यों हुआ इसके कारणों की जांच मेरे ख्याल से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है और काफी हद तक वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो आपका क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है, कौन जिम्मेवार है, वो डेफिनेटली सामने आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मीडिया को चाहिए अभी पब्लिक को बताने के लिए ये मालूम करना चाहिए कि कौन जिम्मेवार है, उस पर ये बहस और ये इस पर चर्चा होती रहती है और हो रही है, और जब से ये इंसिडेंट हुआ तभी से ये चर्चाएं हो रही हैं। इसमें देखिए बेसमेंट पर कोचिंग की कोई भी एक्टिविटीज करना ये बिल्कुल इलीगल है, MCD के रूल्स के बिल्कुल वायलेशन है बिल्कुल, और इसको देखना चाहिए था जो बिल्डिंग मालिक है वो, कोचिंग का इंस्टीट्यूट का जो कोऑर्डिनेटर है वो, इन सबको देखना चाहिए कि जो चीज अलाउड नहीं है, कानून में अलाउड नहीं है, वहां पर ये कार्रवाई कर रहे हैं तो ये गलत है। ये तो पानी भर गया, मान लो यहाँ पर आग लग जाती तो फिर क्या होता, और ज्यादा डेथ होती, आग में आग से झुलसने के साथ साथ आग के धुआं से ज्यादा मौत होती, दम घुटने से मौत होती, क्योंकि वहां पर
दिल्ली के मुखर्जी नगर में, सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर दिल्ली के मुखर्जी नगर में कुछ समय पहले आग भी लगी है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां खिड़की से बाहर बच्चे कूद कूद के अपनी जान बचाए हैं।
जी देखिए वहां पर भी देखिए क्या रीजन था, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद जो सिविल अथॉरिटीज ने कुछ संज्ञान लिया या नहीं लिया या उससे कुछ सीख ली नहीं दी, वो आपका सामने है। अगर वो सीख ली होती तो यहाँ पर भी पहले, जब ये हमारे देश में या दिल्ली में खासतौर से ऐसी बातें जब होती हैं तभी सब जाग जाते हैं। अब MCD भी जाग गई है, फायर ब्रिगेड भी जाग गया है और सभी जाग जाते हैं, और थोड़े दिन के बाद ये जो केस रैपअप हो जाएगा उसके बाद सब भूल जाएंगे, फिर एक घटना होगी उसकी इंतजार लोग करेंगे, फिर दोबारा फिर यही सारा चीज होगा। तो हमारे जो दिल्ली वासी हैं या देशवासी हैं उनको ये सब चीजें भूलने की बड़ी आदत है। ऐसे ऐसे बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इंक्वायरी कमीशन बैठे हैं, सरकार ने अपना इंक्वायरी और टाइम बाउंड इंक्वायरी करी है और इस इंक्वायरी के बाद में जो जो रिकमेंडेशंस हुई हैं उन पे लागू किया या नहीं किया वो अलग बात है। आपको पीछे याद दिला दूं करोल बाग में होटल में ऊपर छत के ऊपर कोई एक्टिविटी चल रही थी, वहां पर आग लगी थी, बहुत से लोग वहां पे कूद कूद के मरे और जल के मरे, उसमें भी इंक्वायरी हुई, पुलिस केस दर्ज हुआ और उसका होटल मालिक बंद हुआ, उसका जो भी अरेस्ट हुए उसके बाद वो केस चल रहा है, उसके बाद भी इंक्वायरी हुई, एमसीडी की तरफ से भी इंक्वायरी हुई, फिर एक बार एलजी साहब को रिपोर्ट भी गई, उसमें रिकमेंड भी किया गया ये होना चाहिए, उसके बाद आप जाके फिर देख लीजिए। वही स्थिति है, कोई रुकावट नहीं हो सकती, कोई कुछ नहीं बदलता नहीं है, और यही एक वजह है कि आम आदमी की और जो कॉमन मैन की जान है वो खतरे में रहती है। बिकॉज हम कब सुधरेंगे ये भगवान जानता है, हम सुधरने की आदत हमारी नहीं है, हम बस एक बार एक और घटना का इंतजार करते हैं और ये घटना ऐसे ही होती रही है और ये होती रहेंगी जब तक हमारी पॉलिटिकल विल और जो सरकारें हैं वो इस पर ध्यान नहीं देंगी तब तक ये घटनाएं मैं समझता हूँ होती रहेंगी। और जिस दिन सख्ती से कार्रवाई होगी हर डिपार्टमेंट का जो भी आदमी इसमें कंसर्न है, चाहे एमसीडी है, चाहे फायर ब्रिगेड है, चाहे पुलिस है, कोई भी अगर है इसमें जुम्मेवार है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। नॉट ओनली नीचे लेवल के आदमियों पे, ऊंचे लेवल तक के जो अधिकारी बैठे हुए उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सब चीज सुधरने वाली नहीं है। अब एग्जैक्ट कौन कौन जिस चीज का रोल है वो सामने इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। अपेरेंटली यही लग रहा है कि इसमें एक्टिविटीज कमर्शियल एक्टिविटीज इसको कैटेगरी कहा गया है, इसमें नहीं होनी चाहिए थी, वो क्यों होने थी। इसमें फायर ब्रिगेड का भी एक वो होता है एनओसी, वो एनओसी फिजिकली वेरीफाई करने के बाद देखा दिया जाता है, और खास तौर से बेसमेंट में जब एक्टिविटीज ऐसी कमर्शियल होती हैं तो उसमें दो दरवाजे देखा जाता है, एक एंट्री एक एग्जिट, यानी कि एग्जिट गेट दो होने चाहिए या एंट्री एक दो भी एंट्री होनी चाहिए ताकि एक गेट में कोई घटना हो जाए तो उसमें निकलने में दिक्कत ना हो, दूसरे दो एक ऑप्शनल एक दरवाजा ये कंपल्सरी है, एनओसी का पार्ट है, तो ये भी देखा होगा उन्होंने कि दूसरा दरवाजा था या नहीं था। यहाँ पर यही पता लगा कि तकड़ा सा दरवाजा था, छोटी सीढ़ियां थी और उसमें जो आदमी निकल पाए वो निकल पाए, जो रह गए वो रह गए और वो उन्होंने अपनी जान दे दी।
इसी के साथ मैं, क्योंकि आपने एनओसी की बात की फायर सर्विसेज की, तो मैं इससे जुड़ा एक फैक्ट और एक सवाल आपके सामने जरूर से रखना चाहूंगी। मैं पढ़ रही थी कुछ देर पहले मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह से अब स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, इन अ स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि 583 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हमारे नेशनल कैपिटल में रन कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 67 के पास ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फ्रॉम द दिल्ली फायर सर्विसेज, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में ये स्टैटिस्टिक्स दिया गया है। यानी कि 516 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका तो अभी पता ही नहीं, जैसे कि जो इलीगल तरीके से रन कर रहे हैं, तो जो रजिस्टर्ड है 516 के पास एनओसी है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो आप मुझे डिटेल्स बता भी रहे थे कि एनओसी कैसे मिलता है, मैं चाहूंगी इसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में इस पर वजन दें और हमें बताएं भी कि इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार कि 516 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास एनओसी नहीं।
ये बहुत बड़ा फिगर है, पूरी दिल्ली में अगर 516 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास एनओसी नहीं है। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो फायर ब्रिगेड देते हैं या दूसरा डिपार्टमेंट एमसीडी देते हैं, उसमें देखते हैं कि ये बिल्डिंग बायलॉज का कोई इसमें उल्लंघन तो नहीं है, तभी जाकर उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद हर साल उसको रिव्यू किया जाता है वो एनओसी को, और एनओसी में एक प्रकार से प्रोफॉर्मा होता है, उसमें सब चीजें नोट की जाती हैं कि इसमें क्या क्या जो एक स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर है, कुछ पॉइंट सारे फिक्स होते हैं, इसमें देखना है एरिया कितना है, उसके बाहर पार्किंग है कि नहीं है, एग्जिट गेट एंट्री गेट अलग अलग है नहीं है, हाइट कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो बेसमेंट अगर है तो बेसमेंट में कितना एरिया कवर किया हुआ है, जो बिल्डिंग बायलॉज में कवर करने के आधार पर आता है वो है कि नहीं है, ये सब चीजें उसमें नोट की जाती हैं। और जो जो किसी भी जैसे फायर ब्रिगेड का ऑफिसर आता है मौके पर देखता है और वो सर्टिफिकेट देता है कि मैंने मौके पर जाके सारा चेक किया है, और जब वो ओके कर देता है यस एवरीथिंग इज ओके, सब चीजें दुरुस्त पाई गई हैं, तभी जाके एनओसी उस डिपार्टमेंट से उसको मिलती है। तो ये एक एनओसी का है, तो बड़ी बड़ी सीरियस घटना बात है कि 516 इंस्टीट्यूट ऐसे चल रहे हैं और जिनके पास एनओसी नहीं है, इसका मतलब वहां कुछ भी अगर हो गया तो सारी की सारी जिम्मेवारी फिर वो जो एनओसी देने वाली संस्था है उसके पास जाएगी, और उनके पास क्यों नहीं है, वो वजह जाननी बहुत जरूरी है। क्यों, इसका मतलब वो है कि वो जो पूरा पैरामीटर्स है एनओसी देने के, उनके उनके ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं, इसीलिए उनके पास एनओसी नहीं है या इसीलिए वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और ये आपने सही कहा, ये तो रजिस्टर्ड है जो इंस्टीट्यूट है, ऐसे कितने ही होंगे जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जो कि इलीगल हैं, जो कि बिना सरकार को बताए वो ऐसे कर रहे हैं। तो ये सर्वे करना, दोबारा से इसको करना बहुत जरूरी है और इसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें लोगों ने पैसा अपना बहुत भारी रकम देकर एडमिशन कराते हैं। उन बच्चों का भविष्य का भी ख्याल रखना है कि उनको जो कोचिंग है वो सही ढंग से मिल सके, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ।
एग्जैक्टली और इसी से जुड़ा सवाल मैं अगला आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ बातें करें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान का केंद्र है, इसमें लीगल इलीगल क्या देखना, लेकिन एक आम इंसान ये समझना चाहता है कि इलीगल कोचिंग से मतलब क्या है। इवन इफ अगर वहाँ अच्छे टीचर्स हो, अच्छा ज्ञान मिल रहा हो, लेकिन वो इलीगल जगह कैसे है, वो सही जगह कैसे नहीं है, और कैसे हम जितनी भी ये इलीगल कोचिंग है जिनके बारे में तो अभी पता ही नहीं, इनका भांडाफोड़ कैसे हो सकता है।
देखिए, जिनके इसके बारे में एमसीडी का जो डिपार्टमेंट है उसका एक प्रकार से सिस्टम है, हर एरिया बांटा हुआ है, जो जूनियर इंजीनियर है उसके अंडर जितना एरिया एमसीडी का है वो डिमार्केटेड है, वो वेरीफाई करें, चेक करें। दूसरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसका एक अहम रोल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंस्टीट्यूशन ऐसे चल रहे हैं जो कि लीगल है या इलीगल है। तीसरा, पुलिस का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि वो भी एक बीट लेवल या डिविजन लेवल में बटा हुआ है, हर एक एरिया पे बीट ऑफिसर्स होते हैं, वो जाके चेक करें, अपनी रिपोर्ट दें, जो जो एरिया में इलीगली ऑक्यूपाइड है या इलीगल चल रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट दें। SHO की जिम्मेवारी है कि वो सारे अपने एरिया में क्या क्या गलत हो रहा है वो सारी की सारी चीज रिपोर्ट उसको दें। हालांकि यहाँ मैं जरा बताना चाहूंगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से बिल्कुल ये सर्कुलर निकला हुआ है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में दिल्ली पुलिस के किसी भी ऑफिसर का अधिकार नहीं है उसको रोकने के लिए या उसको कोई एक्शन लेने के लिए। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई इलीगली कोई धंधा चल रहा है जिसमें पुलिस एक्शन नहीं बनता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखकर भेजना, वो पुलिस की जिम्मेवारी है। तो बीट लेवल पे, डिविजन ऑफिसर लेवल पे SHO अपनी तरफ से ऐसी चीजों की जानकारी कंसर्न डिपार्टमेंट को जरूर भेजे, ये एक बहुत जरूरी अहम बात है। इसी प्रकार से MCD अपना काम करे, इसी प्रकार से फायर ब्रिगेड काम करे अपना अपना, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के एरिया बटे हुए हैं तो उन एरिया के अधिकारी जो उस एरिया के क्षेत्र में नियुक्त किए गए हैं वो अपनी अपनी इसमें रिपोर्ट दें ताकि उसमें सच्चाई पता लग जाए और कितना है सारा के सारा वॉल्यूम इलीगल नॉन इलीगल सारी चीज पता लग जाए।
एग्जैक्टली कुछ आपने पॉइंटर्स हमें अभी शुरुआत में भी बताए कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप इस पर हमें थोड़ी और डिटेल्स दें कि किन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होता है कोचिंग के संचालक को। In fact, while enrolling in a coaching class or institute, parents or students को भी किन बातों का ध्यान रखना है? Apart from अच्छी education या अच्छी faculty.
देखिए, जो coaching institutes बड़े famous हैं, जो अच्छी पढ़ाई के लिए famous हैं, उन्हीं के पास बहुत से लोग उनके parents या बच्चे वहाँ पर आते हैं और उनकी फीस भी बड़ी heavy होती है। तो फीस कोचिंग को अच्छी क्वालिटी देने के साथ साथ ये तो पढ़ाई की एक बात होगी, उनको किस प्रकार से अच्छे फैकल्टी होनी चाहिए, किस प्रकार से अच्छा उसको मटेरियल पढ़ाने के लिए फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली या उनके मॉक ड्रिल मॉक टेस्ट कैसे करने हैं, वो तो एक अलग चीज हो गई है। इसके साथ साथ पढ़ाई के जो एनवायरनमेंट है उसको देखना बड़ा जरूरी है, जैसे क्लासरूम्स है वो ओपनली होने चाहिए, एयरी होने चाहिए, लाइट उसमें नेचुरल लाइट आनी चाहिए, और कहीं ऐसी कोई घटना हो जाए, जैसे अगर कई मंजिल पर है तो आपने देखा होगा कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन चार चार पांच पांच मंजिल के बने हुए हैं, इलीगल ऊपर जो मंजिल उनमें भी क्लास चलाते हैं, तो वहां पर अगर कोई घटना हो जाए तो उनको निकलने की बात, एग्जिट वे रास्ता निकलने का, उतरने का, ये सारी चीजें उनकी सीढ़ियां चौड़ी होनी चाहिए ताकि आराम से जा सके, या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि ऐसी घटना को रोके जा सके। फायर ब्रिगेड के लिए अगर फायर ब्रिगेड तो देर से आएगी, वहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए, उसके पास वो मिट्टी और डालने की बाल्टियां होनी चाहिए और वो फायर फाइटर जो इक्विपमेंट्स है वो एक्टिव है कि नहीं है। अब मैंने कई बार देखा है कि अपने फायर एक्सटिंग्विश लगे होते हैं हर एक फ्लोर पे, कई जगह लगाना जरूरी है, और वो एक एनओसी का पार्ट भी, एनओसी आके एनओसी जो देखता है कि फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कि नहीं है, लेकिन वो लाल लाल डब्बे लगे तो हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट उनकी डेट आउट ऑफ डेटेड हो जाते हैं। वो कई बार देखा जाते हैं आप चलाने के टाइम पे चलते नहीं है, तो वो
और चलाना वो लोगों को आता भी नहीं है और चलाना भी नहीं आता।
चलाना भी आता कि नहीं, तो एक्सपर्ट वहाँ पे है कि नहीं, उसको चलाने के लिए कभी मॉक ड्रिल की कि नहीं की है, उनको उसको चेक करवाया कि नहीं करवाया, टाइम टू टाइम उसको फायर वालों को बुला के या किसी एक्सपर्ट को बुलाकर उसको चेक करवाना है कि नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग वो ठीक है कि नहीं, कहीं शॉर्ट सर्किट का कोई ऐसा तो नहीं है, तो कोई तार खुली तो नहीं घूम रही है, या उस तार से कहीं घटना नहीं हो जाए। सब चीजें हैं जो कि अपनी सेफ्टी के लिए, आदमी की सेफ्टी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी और टीचर्स की सेफ्टी, उन सब की सेफ्टी के लिए जो हमें उपाय, जितने भी देखने वाली चीजें हैं वो सब चीज देखकर हमें सारा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन की क्वालिटी के साथ साथ उनकी अपनी लाइफ की सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, आग से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, या उसका रूम्स का साइज इतना नहीं है कि छोटा रूम है तो उसमें बहुत ज्यादा आदमी भर लिए, तो वो सारी चीज देखनी चाहिए। ये सारी चीजें जो एडमिशन लेते हैं उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को, सबको ये एडमिशन दिलाते वक्त सब चीज देखनी चाहिए, बतानी चाहिए।
शायद सभी को ये समझने की जरूरत है कि जान है तो जहान है। और आखिर में आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है, 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं, तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि कैंडल मार्च निकाली जाएगी, भूख हड़ताल की जाएगी ताकि मुआवजे की मांग हो सके तत्काल, नैतिक आधार पर जो सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सुनवाई भी शायद इसी हफ्ते या अगले हफ्ते से शुरू भी हो जाएगी कोर्ट में इसको लेकर। पर इन द एंड मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से इस मामले में, इस हादसे में सही न्याय क्या?
सही न्याय इस मामले में तभी होगा जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से अच्छी होगी, सभी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जल्द से जल्द इकट्ठे किए जाएंगे, और उन सबूतों को कोर्ट में जल्द से जल्द पेश किया जाकर चालान जल्दी से जल्दी फाइल होकर इसकी ट्रायल डे टू डे बेसिस पे ट्रायल हो, स्पेशल कोर्ट इसके लिए नियुक्त हो, और ताकि इसकी जल्दी निपटारा हो और जो गिल्टी है उनको जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि उसके बाद बाकी जो लोगों के लिए एक प्रकार से आई ओपनर हो जाए, उनके लिए एक लेसन हो जाए कि ऐसा कोई गलतियां वो भी करेंगे तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना हूँ हमारा जुडिशियल सिस्टम के बारे में कि स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, नो डाउट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं हमारे यहाँ दिल्ली में क्या देश में भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ये सारी चीजें हैं। इस केस को भी अगर फास्ट ट्रैक पे जा लेंगे, फास्ट ट्रैक का मतलब फास्ट ट्रैक पे इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करें, सीनियर ऑफिसर्स इसको इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करें, उसकी जो भी कमियां हैं इन्वेस्टिगेशन में वो पूरी हो, कोई कमी छोड़ी ना जाए, किसी प्रकार की कोई ढिलाई ना हो, टाइट एयर टाइट केस बनाकर इसकी ट्रायल भेजी जाए, ट्रायल के लिए भेजा जाए, और ट्रायल में भी उसको वास्तव में ही फास्ट ट्रैक पे डाला जाए। ऐसे बहुत से फास्ट ट्रैक केसेस मैंने देखे हैं, मैं वकील भी हूँ पैसे से, तो वो जैसे वुमेन से रिलेटेड जो जो केसेज हैं, रेप के केसेज हैं, पॉक्सो के हैं, वो कई कई सालों तक चलते हैं, मैं समझता हूँ 6-7-8 साल तक चलते हैं, वो फास्ट ट्रैक का क्या फायदा है। तो मैं समझता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वास्तव में फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। उसकी एक ये है कि हमारे यहाँ जजेस की कमी है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से लोग ऐसे, बहुत से ऐसे अभी एस्पायरेंट्स हैं जो कि जज बनने की कतार में है, लेकिन जज की कमी है, जजेस की, तो क्यों नहीं सरकार भर्ती करती जजेस के लिए, जज की भर्ती करे, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट बनाए, कोर्ट भी और ज्यादा बनाए, कोर्ट रूम बनाए, ताकि केसेस की डे टू डे सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, तो ताकि फैसले जल्दी हो। ऐसे मैंने एक बार देखा था रेप केस में 20 दिन में फैसला हो गया था, वो कैसे संभव है, लेकिन हो गया था, ऐसा हो सकता है, होने को दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सरकार की विल पावर ये बहुत जरूरी है कि अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें न्याय तभी मिलेगा जब हमारी जो सिस्टम है उसमें चुस्ती आए, दुरुस्त आए, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल पावर हो, या इस प्रकार से पुलिस की तरफ से जल्द इसको केस को इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में भेजा जाए।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।
This is an ABP Life podcast.